आप निरंतर आशुतोष कृष्ण शास्त्री से मनुस्मृति श्रवण कर रहे हैं। आज सप्तमो अध्याय का आरंभ हो रहा है, जिसमें राजधर्म विषय वर्णित है। पहले श्लोक में राजा की उत्पत्ति एवं सिद्धि से आरंभ करते हुए भगवान मनु कहते हैं, राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि यथावृत्त्यो भवेन्नृपः संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा। अब मनु जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्णों और चारों आश्रमों के व्यवहार कथन के पश्चात राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि, राजधर्मों को कहेंगे। यथा वृत्ता नृपाः भवेत्, जिस प्रकार का राजा होना चाहिए, च तस्य यथा संभवः, और जैसे उसका संभव बनना, च यथा परमा सिद्धि, और जैसे उसको परम सिद्धि प्राप्त होवे, उनको सब प्रकार कहते हैं। दूसरे श्लोक में राजा बनने का अधिकारी कौन है, इसके बारे में बताते हुए कहते हैं, ब्राह्म्यं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथा विधि सर्वस्यान यथा न्यायं कर्तव्यं परिरक्षणं। ब्राह्म्यं संस्कारं प्राप्तेन क्षत्रियेण, जैसा परम विद्वान ब्राह्मण होता है, वैसा विद्वान सुशिक्षित होकर क्षत्रिय को योग्य है कि अस्य सर्वस्य, इस सब राज्य की परिरक्षणम रक्षा, यथा न्यायम कर्तव्यम, न्याय से यथावत करे, यथाविधि पूर्वक विधि के अनुसार उपनयन में दीक्षित होकर समावर्तन काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। राजा बनने की आवश्यकता बताते हुए तीसरे श्लोक में कहते हैं, अराजके हि लोकेस्मिन् सर्वतो विद्रुते भयात् रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमत्सृजत् प्रभुः। अर्थात ही अराजके अस्मिन् लोके, राजा के इस जगत में सर्वतः भयात् विद्रुते, सब ओर भय के कारण व्याकुलता फैल जाने पर, अस्य सर्वस्य रक्षणार्थम, इस सब राज समाज और राज्य की सुरक्षा के लिए प्रभुः राजानम असृजत, प्रभु ने राजा पद को बनाया है। अर्थात राजा बनाने की प्रेरणा मानवों के मस्तिष्क में दी है। राजा के आठ विशिष्ट गुण बताए हैं, इंद्रा निलयमार्कणम अग्नेश वरुणस्य च चंद्रवित्तेशयोश्चैव मात्रा निरहत्य शाश्वती। यह समेश राजा इंद्र और विद्युत के समान शीघ्र ऐश्वर्यकर्ता, और अनिल वायु के समान सबको प्राणवत प्रिय और हृदय की बात जानने वाला, यम पक्षपात रहित होकर न्यायाधीश के समान वर्तने वाला, अरकाणाम सूर्य के समान न्याय विद्या धर्म का प्रकाशक, अंधकार अर्थात अविद्या का अन्याय विरोधक, और अग्नि अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने वाला, वरुणस्य वरुण अर्थात बांधने वाले के समान दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधने वाला, चंद्र वित्तेशयो चंद्र के समान श्रेष्ठ पुरुषों वाला, आनंददाता धनाध्यक्ष के समान कोषों को पूर्ण रखने वाला होवे। राजा के ये इन आठ गुणों की व्याख्या करते हुए यहां पर हम देखते हैं कि मनु ने इस श्लोक में कहा है कि राजा के जो आठ विशिष्ट गुण हैं, जैसे निम्न आठ ईश्वरीय दिव्य शक्तियों का कार्य या स्वभाव है, वैसा ही राजा का स्वभाव और आचरण होना चाहिए। इंद्र जैसे भरपूर जल बरसाकर जगत को तृप्त करता है, वैसे राजा अपनी प्रजाओं को सुख सुविधाएं ऐश्वर्य प्रदान करें, उनकी कामनाओं को पूर्ण कर संतुष्ट रखें। यदि परमेश्वर भादिगुण से ऋजेन्द्राग्न वज्र सूत्र से रण प्रत्यय के योग से इंद्र शब्द सिद्ध होता, इंद्रते वा ऐश्वर्य कर्मणा, ऐश्वर्य प्रदाता होने से इंद्र कहलाता है। वायु जैसे सब प्राणियों स्थानों में प्रविष्ट होकर वायु विचरण करता है, उसी प्रकार राजा को अपने गुप्तचरों द्वारा सर्वत्र प्रविष्ट होकर स्थानों को अपनी तथा सत्य की प्रजाओं की बातों को जानना चाहिए। और वायु वा गति गंधनयोह अदाति धातु से उड़ादि सूत्र में वायुर्वातेर वृत्तेर्वा स्याद गति कर्मणः मरुत का प्रयोग है। यम ईश्वर की मारक या नियंत्रित शक्ति, जैसे कर्मफल का समय आने पर प्रिय और शत्रु को धर्मपूर्वक अर्थात न्यायानुसार दंडित करता है या मारता है, उसी प्रकार राजा को अपराध करने पर प्रिय शत्रु सभी प्रजाओं को न्यायपूर्वक दंड देना चाहिए, उनको अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। अर्क सूर्य जैसे अपने किरणों द्वारा बिना संतप्त किए जल ग्रहण करता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजा के कष्ट को हानि पहुंचाए बिना ग्रहण कर ग्रहण करे। और अग्नि जैसे अग्नि शुद्ध अशुद्धि का नाश करने शुद्ध करने वाली होती है और तेज से युक्त होती है, उसी प्रकार राजा अपराध हानि और तथा दुष्टता करने तथा प्रजा को पीड़ित करने वालों को प्रभावशाली ढंग से संतापित करे और दंड से सुधारने वाला होवे। इसी प्रकार वरुण जैसे अपने तरंग भंवर रूपी पाश में प्राणियों को फंसा लेता है, उसी प्रकार राजा अपराधियों को शत्रुओं को बंधन या कारागार में डाले। चंद्र जैसे चंद्र शीतलता प्रदान करता है और पूर्णिमा के चांद को देखकर हृदय में प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार राजा प्रजाओं की शांति तथा प्रसन्नता प्रदान करने वाला होवे। उसे राजा के स्वरूप रूप में पाकर प्रजा को हर्ष का अनुभव हो। वित्तेश अर्थात धनाढ्य हो, कुबेर की तरह धन रखने वाला धन का स्वामी हो। वेद में भी राजा के आठ गुणों का वर्णन है। सोमस्य राज्ञो वरुणस्य धर्मणि बृहस्पति रनुमत्या उषरमणि तवाह मध्यमगवन नुपस्तुतौ धात विर्विधातः कलशा अभक्षयन्। अर्थात राज्ञः सोमस्य वरुणस्य मणि, राजा अग्नि चंद्रमा वरुण और जल के समान होता है, अर्थात जल के समान होता है। बृहस्पति अनुमत्ता शरमणि, बृहस्पति सूर्य अनुमत्या लक्ष्मी मघमन धात विधात हे इंद्र हे वायु हे यम अहम अद्य तव उपस्ततो, मैंने तुम्हारी उपस्थिति सन्निधि में रहकर गुणों को धारण करके सोम कलशान अभक्षण ऐश्वर्य कलशों अर्थात राज्य राजेश्वरियों का सेवन किया। अभिप्राय यह है कि इन अंशों से को धारण कर तदनुसार आचरण करने में राज्य संचालन करने में सफलता होती है। राजा के दिव्य गुणों के कारण प्रभावशाली होना पांचवें श्लोक में वर्णित है। यस्मादेशाम सुरेन्द्राणाम मात्राभ्यो निर्मितो नृपः तस्मदभिभवत्तेष सर्वभूतानि तेजसा। यस्मात् क्योंकि एषाम सुरेन्द्राणाम इन शक्तिशाली इंद्र आदि दिव्य शक्तियों के मात्राभ्यः सारभूत गुण रूपी अंश से नृपः निर्मित राजा पद को बनाया है। तस्माद् इसलिए एषः यह राजा तेजसा अपने तेज शक्ति के प्रभाव से सर्वभूतानि अभिभवति सब प्राणियों के वशोभूत एवं पराजित रखता है। छठे श्लोक में कहते हैं। तपत्यादित्यवक्चैः चक्षोंषि च मनांसि च न चैनम भुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवीक्षितुम्। एषः आदित्यवत् जो सूर्यवत् प्रतापी मनान से सबके बाहर और भीतर के मनों को तपत अपने तेज की से तपाने वाला है, एवं भोवि जिसको पृथ्वी में अविवेक्षितुम बड़ी कड़ी दृष्टि देखने को कश्चित अपि न शक्नोति, कोई समर्थ नहीं होता। अर्थात राजा में तेजस्विता, प्रभावशीलता आदि गुण होने चाहिए। इन गुणों से युक्त होकर राजा सफल एवं प्रजाओं का पर प्रभावी रहता है। सातवें श्लोक में कहते हैं कि शोग्निर्भवति वायुश्च सूरकः सोमैव सद्धर्मराट सकुबेरः सवरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः। सह प्रभावतः वह राजा अपने प्रभाव सामर्थ्य के कारण अग्नि ही अग्नि के समान दुष्टों और अपराधियों का विनाश करने वाला, च वायु वायु के समान गुप्तचरों द्वारा सर्वत्र गतिशील होने के कारण प्रत्येक स्थिति की जानकारी रखने वाला, अरकह सूर्य द्वारा किरणों के जल ग्रहण करने के समान शांति प्रसन्नता देने वाला और कष्ट रहित कर ग्रहण करने वाला, सोमह चंद्रमा के समान शांति और प्रसन्नता देने वाला, धर्मराट अर्थात धर्मराज के समान न्यायानुसार दंड देने वाला, कुबेरह ईश्वर प्रद परमेश्वर के समान समभाव से प्रजा का पालन करने वाला, वरुण जलीय तरंगों या भवरों के समान अपराधियों और वर्षाकारक शक्ति, इंद्र के समान सुख सुविधा का वर्षक प्रदाता हो भवती होता है। राजा की अवमानना नहीं करना चाहिए, इसका आठवें श्लोक में वर्णन किया गया है जो प्रक्षिप्त माने गए हैं। बालोपि नामम अन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः महतो देवता हैषा नररूपेण तिष्ठति। भूमिपः बालः अपि, यदि बालक भी हो तो राजा यदि बालक भी हो तो मनुष्य इति न अवमन्तव्यः, उसे साधारण मनुष्य समझकर उसका अपमान करना नहीं चाहिए। ही नररूपेण, क्योंकि नररूप मनुष्य के रूप में एषा महती देवता तिष्ठति, वह एक बड़ी दैवीय शक्ति विद्यमान है। एकमेव दहत्यग्निर् नरम दुरुप शर्पिणम कुलम दहति राजाग्निः शपसु द्रव्य संचयम्। अग्नि आग तो दुरुप शर्पिणम असावधानी से उसके पास जाने से एकम नरमेव दहित, अकेले उस आदमी को ही जलाती है, किंतु राजाग्नि राजा की अग्नि अर्थात क्रोध की अग्नि, शपसु द्रव्यम संचयम कुलम दहति, पशु संपत्ति सहित संपूर्ण कुल को ही जला देती है। कार्यम शोवेक्ष शक्तिम च देश कालो च तत्वतः कुरुते धर्म सिद्ध्यरतम विश्वरूपम पुनः पुनः। सह वह राजा कार्यम शक्तिम च देश कालो, कार्य शक्ति और देश तथा समय का तत्वतः अवेक्ष ठीक ठीक विचार करके धर्म सिद्ध्यर्थम धर्म की सिद्धि के लिए अर्थात कानून का रक्षण एवं पालन कराने के लिए पुनः पुनः विश्वरूपम कुरुते बार बार नाना प्रकार के रूप धारण करता है। यस्य प्रसादे पदमाश्रीर विषयश्च पराक्रमे मृत्युश्च वसित क्रोधे सर्वतेजोमयो हि सः। यस्य जिस राजा के प्रमादे प्रसन्न होने से पदमा च पराक्रमी विजय और प्रसन्न होने से लक्ष्मी और पराक्रमी विजय पराक्रम से विजय और क्रोधे मृत्यु वशति क्रोध में मौत बसती है, सह सर्व तेजोमय ही वह राजा सर्व प्रकार के तेज से युक्त है। तम यस्तु द्वेष्टि सम्मोहात् सविनिश्यन्त्य संशयम् तस्य ह्यासु विनाशाय राजा प्रकुरुते मनः। तम उस राजा को यह तो जो भी कोई सम्मोहात अज्ञानवश द्वेष्टि द्वेष करता है, सह असंशयम विनश्यति वह उसका निस्संदेह ही विनाश हो जाता है, क्योंकि ही राजा तस्य विनाशाय क्योंकि राजा उसके विनाश के लिए आशुः मनः प्रकुरवते शीघ्र ही मन लगाता है। तस्माद्धर्मं यमिष्टेषु सवसेन्नराधिपः अनिष्टं चापि निष्टेषु त तम धर्मम न विचाल्यते। तस्मात् इसलिए सह नराधिपा वह राजा यम धर्मम जिस धर्म अर्थात कानून का इष्टेषु व्यवस्थित पालनीय विषयों में निर्धारण करे, च अनिष्टेषु अपि अनिष्टम और अपालनीय विषयों में जिसका निषेध करे, तम धर्मम न विचालयेत, उस धर्म कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। 14वें श्लोक में दंड की सृष्टि और उपयोग विधि बताई गई है। तस्यार्थे सर्वभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजं ब्रह्मतेजोमयं दंडम असृज्यत् पूर्वमीश्वरः। तस्य अर्थे उस राजा के लिए पूर्वम सृष्टि के प्रारंभ में ही ईश्वरः ईश्वर ने सर्वभूतानां गोप्तारं सब प्राणियों की सुरक्षा करने वाले ब्रह्मतेजोमयं ब्रह्मतेजोमय अर्थात शिक्षाप्रद अपराध नाशक गुण वाले धर्ममात्मजं धर्मस्वरूपात्मक दंडम असृजम दंड को की रचना करी। तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च भयात् भोगाय कल्पन्ते स्वधर्मान् चलन्ति च। तस्य भयात् उस दंड के भय से ही सर्वाणि स्थावराणि च चराणि च भूतानि स्थावर और जंगम प्राणी भोगाय कल्पते भोगों को लिए भोगने के लिए समर्थ होते हैं और स्वधर्मात् न चलन्ति अपने धर्म से विचलित नहीं होते। तम देश कालौ शक्तिं च विद्याचावेक्ष तत्वतः यथारहतः संप्रणयेन नरेस्वान् न्यायवर्तिषु। देश कालौ शक्तिं च विद्यां देश समय शक्ति और विद्या अपराध के अनुसार उचित दंड का ज्ञान इन बातों को तत्वतः अवेक्ष ठीक ठीक विचार करके अन्याय वर्तिष अन्याय का आचरण करने वाले को नरेशु लोगों में तम उस दंड को यथारहत संप्रेण यथा योग्य रूप में प्रयुक्त करे। दंड का महत्व सराजा पुरुषो दंड सनेता शासिता च सह चतुर्णामाश्रमाणाम च धर्मस्य प्रतिभू स्मृतः। सदंड पुरुषा राजा जो दंड है वही पुरुष है, राजा सनेता वही न्याय का प्रचार करता, च शासिता और सबका शासन करता, श चतुर्णाम आश्रमाणाम च धर्मस्य प्रतिभू स्मृता वह चारों वर्ण चार आश्रमों के अधर्म धर्म का प्रतिभू अर्थात जामिन है। तै दंडः शास्त्री प्रजा शवे दंड एवाभिरक्षति दंडः सुप्ते सुजागर्ति दंडम धर्मम विदुर्बुधा। वास्तव में दंडः सर्वाः प्रजाः शास्ति दंड विधान से सब प्रजाओं का शासन रखता है। दंडः एव दंड ही अभिरक्षति प्रजाओं की ओर से दुष्टों आदि की रक्षा करता है। सप्तेषु सुप्तेषु अर्थात सोती हुई प्रजाओं में दंडः जागर्ति दंड ही जगाता रहता है अर्थात प्रमाद और एकांत होने से अपराधों के समय दंड का ध्यान ही उन्हें भयभीत करके उनसे रोकता है। भय दंड का भय एक ऐसा भय है जो सोते हुए भी बना रहता है, इसलिए बुधाह बुद्धिमान लोग दंडम धर्मम विदु दंड विधान को राजा का प्रमुख धर्म मानते हैं। न्यायानुसारी दंड ही हितकारी इसके बारे में 19वें श्लोक में कहते हैं समीक्ष सघृताः सम्यक् सर्वारञ्जयति प्रजाः असमीक्ष प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः। सम्यक् समीक्ष धृतः जो दंड अच्छे प्रकार विचार से धारण किया जाए तो वह सर्वाः प्रजा रंजयति सब प्रजा को आनंदित कर देता है। असमीक्ष प्रणीतः तु और जो बिना विचार किया चलाया जाए वह सर्वतः विनाशयति सब ओर से राजा का विनाश कर देता है। यदि न प्रणयेद् राजा दंडम दंडे स्वतन्द्रितः शूले मत्स्यानि पापक्षन् दुर्बलान् बलवत्तराः। यदि राजा अतिन्द्रिय आलस्य छोड़कर सावधानी असावधानी से अर्थात आलस्य छोड़कर सावधानी पूर्वक दंडेषु दंडम न प्रणयेत् दंड के अधिकारी को दंड का प्रयोग नहीं करता तो बलवत्तरा अधिक शक्तिशाली लोग दुर्बलान दुर्बलों को शूले मत्स्यानि जैसे लोहे की सीख में मछलियों को भूंजते हैं ऐसे अपच्छन भूंज डाले अर्थात जीवित ही रहने देवे। अद्यात काकः पुरुडाशं स्वाचलीहा धविस्तया स्वाम्यं च नत्स्यात् कंशित् प्रवर्तेता धरोत्तमं। काकः पुरुडाशं अद्यात् कौवे यज्ञ के लिए निर्मित अन्न की आहुति को खा जाए अर्थात धूर्त और बदमाश श्रेष्ठों की संपत्ति हड़प ले तथा स्वाह हवि लिहात कुत्ते हवि को चाट जाए अर्थात दुष्ट लोग सब धर्म को नष्ट भ्रष्ट कर दें। कंशमिश्चित स्वाम्यम न स्यात् किसी का चीज पर अधिकार न रहे अधर उत्तरम प्रवर्तित सब अवस्थे हो जाए सब मर्यादाएं भंग हो जाए। सर्वो दंड जितो लोको दुर्लभो हि सुचिरणरः दंडस्य हि भया सर्वं जगद्भोगाय कल्पते। सर्वः लोकः दंडजितः सब लोग दंड के वशीभूत होकर ही कर्तव्यों का पालन करते हैं। हि सुचि ही नरः दुर्लभः क्योंकि स्वाभाविक रूप से पवित्र अर्थात ईमानदारी स्वयं ही कर्तव्यों का पालन करने वाले लोग दुर्लभ विरले होते हैं। दंडस्य ही भया दंड के भय से ही सर्वम जगत भोगाय कल्पते कर्तव्यों का पालन करने के लिए दंडों को भोगने के लिए उद्दत होता है। देवदानव गंधर्वा रक्षांसि पतो गोरगा तेपि भोगाय कल्पन्ते दंडे नैव निपीडिता। देवदानव गंधर्वा देव दानव गंधर्व रक्षांसि पतो गोरगा राक्षस पक्षी सांप ते अपि वे सब भी दंडेन एव निपीडिता दंड के डर से भयभीत होकर भोगाय कल्पते अपने भोगों को भोगने में उद्यत होते हैं अर्थात अपने कर्तव्यों को करते हैं। 24वें श्लोक में कहते हैं दुष्वेयु सर्व वर्णाश्च विद्येरन सर्वसेवत्तवः सर्वलोक प्रकोपांश्च भवे दंडस्य विभ्रमात्। सर्ववर्णाः दुष्येष्यु बिना दंड के सब वर्ण दूषित और सर्वसेतवः भिन्देरन सब मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो जाएं। दंडस्य विभ्रमात् दंड के यथावत न होने से सर्वलोकः प्रकोपः भवेत् सब लोकों का प्रकोप हो जावे। यत्र शामो लोहिताक्षो दंडश्चरति पापः प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत् साधु पश्यति। यत्र श्यामः लोहिताक्षः पपः जहाँ कृष्णवर्त रक्त नेत्र भयंकर पुरुषों के समान पापों का नाश करने वाला दंडः चरति दंड विचरता है तत्र प्रजाः न मुह्यन्ति वहाँ प्रजा मोह को प्राप्त नहीं होती अर्थात आनंदित होती है। नेता साधु पश्चित चेत परंतु जो दंड को चलाने वाला है पक्षपात रहित विद्वान हो तभी। तस्याहु संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनं सम्मीक्षकारिणं प्राज्ञं धर्मकर्मार्थकोविदं। तस्य संप्रणेतारं राजानं आहु उस दंड को अच्छे प्रकार चलाने वाले उस राजा को कहते हैं कि सत्यवादिनं समीक्षकारिणं जो सत्यवादी विचार ही करके कार्य का कर्ता प्रज्ञां बुद्धिमान विद्वान धर्म काम अर्थ कोविदम धर्म का काम और अर्थ का यथावत जानने वाला है। अगले श्लोकों में कहते हैं कि तम राजा प्रणयन सम्मक त्रिवर्गेणाभिवर्धते कामात्मा विषमः शुद्धो दंडेनैव निहन्यते। तम सम्यक राजा प्रणयन जो राजा दंड को अच्छे प्रकार चलाता है त्रिवर्गेण अभिवर्धते वह धर्म अर्थ और काम की सिद्धि को बढ़ाता है और जो कामावस्था का विषय के में लंपट विषमः टेढ़ा ईर्ष्या करने वाला क्षुद्रः क्षुद्रनीत बुद्धि न्यायाधीश राजा होता है दंडेन एव निहन्यते दंड से ही मारा जाता है। दंडो ही सुमहत्तेजो दुर्धर्षरश्चाकृतात्मभिः धर्माद् विचलितं हन्ति नृपभू नृपमेव शवान्धवम्। दंडः ही सुमहत्तेजः दंड ही बड़ा तेजोमय होता है अकृतात्मभिः दुर्धरः उसको अविद्वान अधर्मात्मा धारण नहीं कर सकता। धर्मात् विचलितं नृपमेव तब वह दंड धर्म से रहित राजा ही का हन्ति नाश कर देता है। 29वें श्लोक में कहते हैं, ततो दुर्गम च राष्ट्रम च लोकम च सचराचरम अंतरिक्षं गताश्चैव मुनींदे वांशपीडयेन। ततः उसके बाद ही दुर्गम राष्ट्रम च समाचरम लोकम, किला देश और चराचर जगत को, च अंतरिक्ष गान मुनीन एव देवान, अंतरिक्ष में रहने वाले मुनियों और देवों को पीडयेत, नष्ट कर देता है। सुसहायेन मूढ़ेन लुब्धेन कृतबुद्धिना न शक्यो न यतो नेतुं शक्तेन विषयेषु च। असहायेन मूढ़ेन, जो राजा उत्तम सहाय रहित, मूढ़ लुब्धेन लोभी, अकृत बुद्धिना जिसने ब्रह्मचार्य इत्यादि उत्तम कर्मों से विद्या और बुद्धि की उन्नति नहीं की, जो विषयों में फंसा हुआ है, उससे वह दंड कभी न्यायपूर्वक नहीं चल सकता। सुचिना सत्यसंधेन यथाशास्त्रनुसारिण प्रणेतुं शक्य दंडेन दंडः सुहायेन धीमताम। और सुचिना, जो पवित्र सत्यसंधेन सत्याचार और सत्पुरुषों का संगी, यथा न्यायशास्त्र अनुसारिणा यथावत न्यायशास्त्र के अनुकूल वाले आचरण करने वाला, सुसहायेन श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से युक्त, धीमता बुद्धिमान है, दंडः प्रणेतुं शक्यते, वही न्याय रूपी दंड को चलाने में समर्थ होता है। स्वराष्ट्रे न्यायवत्तः स्यात् ब्रसदंडस्य शत्रुषु सुहृत्सु जिभ्यः स्निग्धेषु ब्रह्मणे सुक्षमान्वितः। स्वराष्ट्रे न्यायवत्तः स्यात्, राजा अपने राज्य में न्याय के अनुसार दंड का प्रयोग करे। च शत्रुभ्यः ब्रसदंडः, शत्रुओं में कठोर दंड का प्रयोग करे। स्निग्धेषु सुहृत्सु अजिह्वः, प्रिय मित्रों में सरस व्यवहार करे। ब्रह्मणेषु क्षमान्वितः, ब्राह्मणों पर क्षमा का व्यवहार करे। तैतीसवें श्लोक में महर्षि मनु कहते हैं कि न्यायानुसार दंड देने से राजा की यश वृद्धि होती है। एवं वृत्तस्य नपते शिलोङ्क्षेनापि जीवतः विस्तीर्यते यशो लोके तैलबिन्दुरिवाम्भसी। एवं वृत्तस्य नपते, इस प्रकार न्यायपूर्वक दंड का व्यवहार करने से शिलोङ्क्षेनापि जीवतः, शिल उक्ष से निर्वाह करने वाले अर्थात धनहीन राजा का भी यशः, अम्भसी तैलबिन्दुयुव, जिस प्रकार से तेल का बिंदु जल पर फैल जाता है, उसी प्रकार राजा का यश संपूर्ण संसार में ज्ञात हो जाता है। न्याय विरुद्ध आचरण से यश का नाश होता है, ऐसा विधान करते हुए महर्षि मनु 34वें श्लोक में कहते हैं, अतस्तु विपरीतस्य नृपते रजितात्मनः संक्षिप्यते यशो लोके ग्रत बिंदु मिरिवांभर्सी। चाहे जितना बड़ा राजा हो, अतः तो विपरीतस्य, विपरीत धर्माचरण करने पर अजितात्मनः नृपते, जिसकी इंद्रियां अपने वश में नहीं है, उस नृप की यशः, यश अम्भसी घृत बिंदु इव, जैसे लोके संक्षिप्यते, जिस प्रकार पानी पर घी की बूंद डालने से जम जाती है, उसी प्रकार उसका यश सिमट जाता है। राजा की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है और विषय का उपसंहार करते हुए यहाँ पर 35वें श्लोक में महर्षि मनु कहते हैं, स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषाम् अनुपूर्वशः वर्णानामाश्रणामाणां च राजा श्रेष्ठोऽभिरक्षितः। स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां, अपने अपने धर्मों में संलग्न, अनुपूर्वशः सर्वेषाम् वर्णानां च आश्रमाणां, क्रमशः सब वर्णों और आश्रमों का, राजा पद पर आसीन व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह सब वर्णस्थ और आश्रमस्थ व्यक्तियों को उनके धर्मों में प्रवृत्त रखे। समाज धर्म नियम व्यवस्था को चलाने के लिए राजा और राज्य की सृष्टि की जाती है।
चातुर्वर्णाश्रमस्यायम् लोकस्याचार रक्षणात् नश्यताम् सर्वधर्माणाम् राजधर्म प्रवर्तकः।
इस प्रकार से राजा के लक्षण बताए गए हैं। राजा की जीवनचर्या और भृत्यों आदि की नियुक्ति संबंधी विधान 36वें श्लोक में बताया गया है।
तेन यद्यत् सभृतेन कर्तव्यं रक्षता प्रजा तद्वदोहं प्रवक्षामि यथा वदनुपूर्वशः।
तेन उस राजा को सभृतेन अपने अमात्य मंत्री आदि सहायकों सहित प्रजा रक्षता प्रजाओं की रक्षा करते हुए
यत यत कर्तव्यम जो जो जैसा जैसा करना चाहिए तत् तत् उसको
अनुपूर्वशः क्रमशः यथावत् प्रवक्षामि क्रमशः कहूंगा।
ब्राह्मणान् पर्युपासीत प्रातरुत्थाय पार्थिवः त्रविद्धि वृद्धान् विदुष तिष्ठेत्तेषा च शासति शासनी।
अर्थात पार्थिवः राजा प्रातः उत्थाय सवेरे सवेरे उठकर वर्णित दिनचर्या को करके त्रिविध वृद्धान विदुषाः ब्राह्मणान् ऋक्साम यजुरूपी त्रय विद्या में बड़े चढ़े पारंगत आचार्य ऋत्विज आदि को प्रणाम करे और च तेषाम उन शिक्षक विद्वानों की शासने तिष्ठेत निर्देशन और मर्यादा में अपना जीवन रखे।
वृद्धांश नित्यं सेवेत विप्रान् वेद विदः शुचीन् वृद्ध सेवी ही सततम् रक्षोभिरपि पूज्यते
च शुचीन् और शुद्ध हृदय वाले वेद विदः वेद के ज्ञाता वृद्धान् विप्रान् तपस्या ज्ञान में बड़े बड़े ब्राह्मणों की नित्यम सेवित नित्य प्रति आदर सत्कार सेवा करे। ही संततम बुद्धिसेवी क्योंकि सदैव ज्ञान आदि से बड़े बड़े विद्वानों की सेवा करने वाला राजा रक्षो भी ही अपि पूज्यते राक्षसों द्वारा भी पूजा जाता है। राजा के वेद वेत्ताओं के अनुसार की शिक्षा ले। इस प्रकार से 39वें श्लोक में
तेभ्यो अधिगक्षेद् विनयम् विनया विनीता म्यामापि नित्यशः विनीतात्मा हि नृपतिर् न विनिष्यति कर्हिचित।
विनीत आत्मा अपि विनयी अर्थात अनुशासनशील मर्यादाओं में रहने वाला राजा तेभ्यः नित्यशः उन वेद वेत्ताओं गुरुजनों से प्रतिदिन विनयम् अधिगक्षेत् अनुशासन और मर्यादा के शिक्षा ग्रहण करे। हे विनीत आत्मा नपति क्योंकि अनुशासन में रहने के स्वभाव वाला राजा कर्हिचित् न विनिश्यति कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता और 40वें श्लोक में
राजा विद्वानों से विद्याएं ग्रहण करे ऐसा बताया गया है। त्रिविद्येभ्यस्त्रयीं विद्यां दंदनीतिं च शाश्वतीं अन्वीक्षकीं चात्मविद्यां वातरिं भाष्य लोकतः।
राजा और राज्यसभा के सभासद तब हो सकते हैं कि जब वे त्रिवेदीभ्यः चारों वेदों की कर्म उपासना ज्ञान विद्याओं को जानने वालों से त्रयी विद्याम तीनों विद्या शाश्वतीम दंडनीतिम सनातन दंडनीद अन्वीक्षिकीम न्याय विद्या आत्मविद्याम और आत्मविद्या अर्थात परमात्मा गुणकर्म स्वभाव को यथावत जानने वाली ब्रह्म विद्या च लोकतः वार्ता आरंभान लोक के वृत्तांतों का आरंभ कहना सुनना सीखकर सभासद या सभापति हो सके।
जितेंद्रिय राजा ही
प्रजाओं को वश में रख सकता है। इंद्रियाणाम जय योगम समातिष्ठे दिवानिशम जितेन्द्रियो ही शक्नोति वसे स्थापितुम प्रजा। जब सभासद और सभापति इंद्रियाणाम जय समाधितिष्ठेत इंद्रियों को जीतने अर्थात अपने बस करने में सदा धर्म वर्तने में अधर्म से हटे हटाए रहें, दिवानिशम योगम दिन रात निरत समय में योगाभ्यास भी करते रहें ही, क्योंकि जितेंद्रियां जो जितेंद्रिय अपनी इंद्रियों को मन प्राण और शरीर प्रजा है, इसको जीते बिना प्रजा वसे स्थापितुम शक्नोति, बाहर की प्रजा को अपने वश में स्थापन करने में समर्थ कभी नहीं हो सकता। व्यसनों की गणना करते हुए पंचमें 45वें श्लोक में कहते हैं, दशकामा समुत्थानि तथाष्टौ क्रोधजानि च व्यसनानि दुरंतानि प्रयत्नेन विवर्जयेत। दृढ़ोत्साही होकर दशकाम समुत्थानि च अष्टौ क्रोधजानि च, जो काम से 10 और क्रोध से 8 व्यसनानि दुष्ट व्यसन दुरंतानि कि जिनमें फंसा हुआ मनुष्य कठिनता से निकल सके उनको यत्नेन विवर्जयेत, यत्न से छोड़कर और छुड़ा देवी। कामशेषु प्रसक्ति प्रसक्तो ही व्यसनेषु महीपते विषय वियुज्यते अर्थधर्माभ्याम क्रोधजेष्वात्मनैव तु ही, क्योंकि महीपति जो राजा कामजेषु प्रसक्ता काम में उत्पन्न हुए 10 दुष्ट व्यसनों में फंसता रहता है, अथ धर्माभ्याम वियुज्यते वह अर्थ अर्थात राज्य धन और धर्म से रहित हो जाता है, तो क्रोधजेषु जो क्रोध से उत्पन्न हुए 8 बुरे व्यसनों में फंसता है, आत्मना एव वह शरीर से भी रहित हो जाता है। मृगयाक्षो दिवास्वान परिवादा स्त्रियो मदह तौर्यत्रिकम यथा व्रथाट्याम च कामजो दशको गणः। काम से उत्पन्न हुए व्यसन गिनाते हैं मृगया खेलना, अक्ष चौपड़ खेलना, जुआ खेलना आदि, दिवा स्वप्न दिन में सोना, परिवाद काम कथा अथवा दूसरों की निंदा करना, स्त्रियों की का अतिसंग, मदह मादक द्रव्य अर्थात अफीम मद्य इत्यादि का सेवन करना, तौर्यत्रियक गाना बजाना नाचना इत्यादि करना, वृथा इधर उधर घूमना, दशक कामज गणा ये 10 कामोत्पन्न विषन है। पैशून्यम साहसम द्रोहम ईर्ष्या सुयथार्दूषणम वाग्दंडजम च पारुष्यम क्रोधजोपि गणोष्टकः। क्रोध से उत्पन्न विषनों को गिनाते हैं पैशून्यम, पैशून्य अर्थात चुगली करना, साहसम बिना विचारे बलात्कार किसी स्त्री से बुरा काम करना, द्रोह करना, ईर्ष्या करना दूसरे की बड़ाई उन्नति देखकर जला करना, असूया दोषों में गुणों में दोष रोपण करना, और अर्थ दूषण अधर्म युक्ति बुरे कामों में धन आदि का व्यय करना, वाग्दंडजम कठोर वचन बोलना और बिना अपराध का कड़ा वचन, च पारुष्यम विशेष दंड देना, ये 8 दुर्गुण क्रोध से उत्पन्न होते हैं। सभी व्यसनों का मूल लोभ होता है। द्वयोरप्येत तयोर्मूलम यम सर्वे कवयो विदुः तम यत्नेन जयेल्लोभम यज्जावेताबुभौगणौ। और एतयो द्वयो अपिमूलम यम लोभम, जो इन कामज और क्रोधज 18 दोषों के मूल जिस लोभ को सर्वे कवयः विदुः सब विद्वान लोग जानते हैं, तम यत्नेन जयेत उसको प्रयत्न से राजा जीते, क्योंकि तत्जौ एतौ उभौ गणौ लोभ ही पूर्वोक्त 18 और अन्य दोष भी बहुत से होते हैं। पानमक्षास्त्रियस्यैव मृगया च यथाक्रमम् एतत् कष्टतमं विद्या चतुष्कम कामजी गणे। काम के व्यसनों में बड़े दुर्गुण, एक पानम मद्य अर्थात मद्यकारक द्रव्यों का सेवन अथवा अक्षा पासो आदि से खेलना, स्त्रियः एव स्त्रियों का विशेष अंग, चौथा मृगया खेलना, एतत् चतुष्कम कष्टतमं विद्यात् चार महादुष्ट व्यसन है।
नन्नस्य पातनं चैव वाक्यपारुष्यार्थदूषणे क्रोधजेऽपि गणे विद्या कष्टमेतत् त्रियं सदा।
च और क्रोधजेऽपि गणे, क्रोधजों में दंडस्य पातनम, बिना अपराध दंड देना, वाक पारुष्य अर्थ दूषणे, कठोर वचन बोलना और धन आदि का अन्याय में खर्च करना, एतत् त्रिकम सदा कष्टम, ये तीन क्रोध से बड़े उत्पन्न हुए बड़े दुखदायक दोष हैं।
सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रैवानुषंगिणः पूर्वं पूर्वं गुरुतरं विद्याद्वेषनम् मात्मवान्।
अस्य सप्तकस्य वर्गस्य, इस सात प्रकार के दुर्गुणों के वर्ग में सर्वत्र एव अनुषंगिणः, जो सब स्थानों पर सब मनुष्यों में पाए जाते हैं, आत्मवान आत्मा के उन्नत चाहने वाला राजा, पूर्वम पूर्वम व्यसनम गुरुतरम विद्यात, पहले पहले व्यसन को अधिक कष्टप्रद समझे। व्यसन मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी होता है।
व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनम कष्टमुच्यते व्यसन्नधोधो व्रजति स्वर्यात्यव्यसनी मृतः।
व्यसनस्य च मृतोश्च मृतोश्च, व्यसन और मृत्यु में व्यसन कष्टम मुच्यते, व्यसन को ही अधिक कष्टदायी कहा गया है, क्योंकि व्यसनी व्यसन में फंसा रहने वाला व्यक्ति अधा अधा यात दिन दिन दुर्गुणों और कष्टों में गिरता ही जाता है या अवनत को प्राप्त होता जाता है, किंतु अपवेशनी व्यसन से रहित व्यक्ति मृतः मरकर भी स्वर्गात स्वर्गम स्वर्ग को प्राप्त करता है अर्थात परम जन्म में सुख मिलता है। चौवनवें श्लोक में मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बताते हैं।
मौलां शास्त्र विदा सूरान लब्ध लक्षान कुलोद्भवान सचिवान सप्तचाष्टौ वा प्रकरवीत परीक्षितान।
मौलान स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न, शास्त्रविदा वेदादि शास्त्रों को जानने वाले, सूरान सूरवीर लब्ध लक्षणान जिनके लक्ष्य और विचार निष्फल न हों, और कुलोद्गतान कुलीन परीक्षितान अस्य प्रकार अच्छे प्रकार से सुपरीक्षित, सप्तवा अष्टवा सात अथवा आठ सचिवान उत्तम धार्मिक चतुर मंत्री, प्रकुरुवीत करे।
यहाँ इसका विस्तार से विवेचन देखते हैं कि जो अपने राज्य में उत्पन्न शास्त्रों को जानने वाले सूरवीर जिनका विचार निष्फल न हुए, कुलीन धर्मात्मा स्वराज्य भक्त हों, उन सात आठ पुरुषों को अच्छी प्रकार परीक्षा करके मंत्री करे, इन्हीं की सभा में आठवां नौवां राजा हो, ये सब मिलके कर्तव्य और अकर्तव्य कामों का विचार किया करें।
नियुक्ति से पूर्व अमात्यों की परीक्षा विधि आचार्य कौटिल्य ने गुप्त विधियां बताई हैं अपनी अर्थशास्त्र में। एक तो प्रकट विधि, पहली प्रकट विधि जो नियुक्ति से पूर्व राजा प्रमाणिक सत्यवादी आप्त पुरुषों के द्वारा उनके निवास स्थान उनकी आर्थिक स्थिति की जानकारी करे, सहपाठियों के माध्यम से उनकी योग्यता और शास्त्रीय प्रतिभा की नए नए कार्य सौंपकर उनकी बुद्धि स्मृति और चतुरता की, व्याख्यानों एवं सभाओं द्वारा उनकी वाक्य पटुता प्रगल्भता और प्रतिभा की आपत्ति प्रस्तुत करके उनके उत्साह प्रभाव और सहन शक्ति की, व्यवहार से उनकी पवित्रता मित्रता एवं दृढ़ स्वामी भक्त की, सहवासियों एवं पड़ोसियों के माध्यम से उनके शील बल स्वास्थ्य गौरव अप्रमाद एवं स्थिर वृत्ति की जानकारी करी, उनके मधुर भाषी एवं स्वभाव द्वेष रहित स्वभाव की परीक्षा राजा स्वयं करे, तथा गुप्त विधि में बताया है धर्मोपधा विधि, गुप्त धार्मिक उपायों से आमात के हृदय की पवित्रता की परीक्षा करना, अर्थोपधा गुप्त आर्थिक लोभ की बातों से उसके लोभ की परीक्षा करे, कामोपधा गुप्त काम संबंधी आकर्षणों से, भयोपधा गुप्त भय आदि प्रदर्शित करके आमात्यों के हृदय की पवित्रता की परीक्षा करें। गुप्तचरों द्वारा इनकी परीक्षाएं करने के पश्चात ही उस व्यक्ति को यथा योग्य आमात्य कार्य पर नियुक्त करना किया जाना चाहिए। कौटिल्य का मत है कि धर्म परीक्षा में पवित्र सिद्ध अमात्यों को न्यायालय में, अर्थ परीक्षा में पवित्र को कर संग्रह और कोष संरक्षण में, काम परीक्षा में पवित्र अंतःपुर विलास स्थलों में, और भय परीक्षा में पवित्र को अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करना चाहिए। राजों को जो सहायतों की आवश्यकता होती है, इसमें कारण के बारे में 55वें श्लोक में महर्षि कहते हैं कि अप्यत सुकरम करमम यदप्येके न दुष्करम विशेषतो सहायेन किंतु राज्यम महोदयम्। क्योंकि विशेषतः असहायेन, विशेष सहाय के बिना, यह सुकरम कर्म जो सुगम कर्म है, तत अपि वह भी एकेन दुष्करम, एक महान राज्य कर्म कैसे हो सकता है। इसलिए एक को राजा और एक को बुद्धि पर राज्य के कार्य को निर्भर रखना बहुत ही बुरा काम है। सहायता के बिना साधारण काम भी एक के लिए कठिन हो जाता है, फिर बड़े भारी राज्य का काम एक से कैसे हो सकता है। इसलिए एक को राजा बनाना और उसी की बुद्धि पर सारे काम का बोझ रखना बुद्धिमत्ता नहीं है। राजा को मंत्रियों के साथ मंत्रणा करना चाहिए। इस बारे में 56वें श्लोक में कहते हैं, तैः सार्धं चिन्तयेन् नित्यं सामान्यं संधि विग्रहं स्थानं समुदयं गुप्तिं लब्ध प्रशमनानि च। इसमें सभापति को उचित है कि नित्यम नित्य प्रति तैः सार्धं, उनके साथ, कुशल विद्वानों के साथ, मंत्रियों के साथ, सामान्यम सामान्य करने की करके किसी संधि विग्रहं, संधि अथवा विग्रह विरोध की स्थानम स्थित समय को देखकर चुपचाप रखना, अपने राज्य की रक्षा करके बैठे रहना, समुदयम जब अपना उदय अर्थात वृद्धि हो तब, दुष्ट शत्रु पर चढ़ाई करना, और गुप्तिम मूल राज सेना कोष आदि की रक्षा, लब्ध प्रशमनानि जो जो देश प्राप्त हो उसमें शांति स्थापना, उपद्रव रहित करना, चिंतित इन 6 गुणों का विचार नित्यप्रति किया करे। तेषां स्वं स्वभिप्रायं उपलभ्य पृथक पृथक समस्तानां चकारेषु विदध्याधित्तमात्मनः। तेषाम उन सभासदों का पृथक पृथक स्वस्वयं अभिप्राय उपलब्ध, पृथक पृथक अपना विचार और अभिप्राय को सुनकर, समस्तानाम कार्य सभी के द्वारा कथित कार्यों में आत्मना हितम जो कार्य अपना और अन्य का हित कारक हो विदधात वह करने लगना, अर्थात वही कार्य करें।